सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् अन्ताय मच्छहीणं दशदशय चावदीहिरं पडमजिनं वोक्षम्णमि ऊणन्तरम् अनन्तरुत्तुङ्गसन्नमयि दुग्गेचम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो पंचमी पुस्तक है, पांचवी पुस्तक, उसमें अंतरानुगम में पृष्ठ संख्या 69 पर आए हम, 69। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त को में अपनी मार्गणा कौन सी चल रही है, याद है, इंद्रिय मार्गणा। तो एक इंद्रिय आदि विकलेंद्रिय वगैरह सब हमने देखा था। अब कहते पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त को में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर ओग के समान है, उसको है किया ना हमने कल, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त कम 2/66 सागरोपम काल अंतर है, यानी पंचेंद्रिय और मिथ्या दृष्टि ऐसा लेना। मिथ्या दृष्टि का अंतर यानी पंचेंद्रिय इतना तो रखा, तो हमने वो 66 सागर कैसे देव मनुष्य के भव होते हैं उसकी बात हम कल हमने देखी थी। इस प्रकार ओग की अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है। अब अगला सूत्र भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से शुरुआत होती है। शासन सम्मा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवशीरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। उक्त दोनों प्रकार के पंचेंद्रिय शासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, ये तो हमने बहुत बार देखा है, दूसरे तीसरे गुणस्थानों का अनेक जीवों की अपेक्षा। उक्त दोनों गुणस्थानों के सभी जीवों के अन्य गुणस्थान को चले जाने पर दोनों गुणस्थानों का एक समय विरह पाया जाता है। विरह कहो या अंतर कहो ही की बात है, यानी उसमें से सभी के सभी जीव अन्य गुणस्थान में चले जाएंगे और उन गुणस्थानों में एक भी जीव नहीं है, ऐसा जब होगा तब अंतर कहेंगे उसको। तो ऐसा जघन्य एक समय के लिए हो सकता है, और अभी उत्कृष्ट अंतर बताएंगे, पल्ले का असंख्या तो अभाग है ना। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर ये ऊपर पढ़ेंगे पहले। उक्कस्य न पलिदोवमस्य असंख्येज्यदि भागो। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि ये दोनों सांतर राशियां जिनमें अंतर पाया जाता है उसको सांतर राशि कहते हैं। तो दूसरे तीसरे गुणस्थानों की जो राशि है वो सांतर राशियां है। हमने देखा था पहला है, चौथा है, पांचवा है, छठा, सातवा है, तेरहवा है, ये निरंतर है और इनको कहते हैं सांतर। शंका कहते हैं इनका पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग से अधिक अंतर क्यों नहीं होता। प्रश्न क्या पूछा, इतना ही अंतर क्यों, और अधिक बढ़ाओ ना। तो उसका उत्तर है स्वभाव से ही अधिक अंतर नहीं होता। जो नहीं होता तब कहने में आता है, क्योंकि केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जो बातें झलकी है वे उन्होंने बताई है। जैसे सूरज पूर्व से ही क्यों उगता है, तो जिस दिशा से उगता है उसी को तो हम पूर्व कहते हैं, किसी हम अननोन ठिकाने जाएंगे और पूर्व दिशा हमको पूछेंगे तो हम देखेंगे कहाँ से सूरज उग रहा है, तो उसको हम पूर्व दिशा कहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं, ये गांव की ये पूर्व दिशा है तो इधर से सूरज को उगना चाहिए। ख्याल है मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ऐसे भगवान ने क्या देखा है, केवल ज्ञान में क्या झलका है या वस्तु स्वरूप में क्या है कि अधिक से अधिक अंतर पल्ले का असंख्यात भाग इतना ही हो सकता है, अधिक हो ही नहीं सकता है, तो हो नहीं सकता, इसलिए स्वभाव से ही ऐसा है। अब आगे एक जीव की अपेक्षा अब बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न पलिदो वमस्य असंख्य यदि भागो, ये कौन से गुणस्थान के लिए चल रहा है? दूसरे के लिए। और अंतम उत्तम किसके लिए? तीसरे गुणस्थान के लिए। बराबर, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्ल्योपम का असंख्यात भाग और अंतर्मूर्त है, इसलिए क्रमशः लिख दिया। यह सूत्र सुगम है क्योंकि बहुत बार कहा गया है। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। उक्कस्येन सागरोवम सहस्राणि पूर्वकोड़ी पुदत्तेन बहियाणि सागरोवम सदपुदत्तम। क्या कहते हैं? उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती, ये हमारी बात पंचेंद्रियों की चल रही है। पहले तो हमने मनुष्य गति में देव गति में अलग अलग देखा था उत्कृष्ट का। अब यहाँ यानी वो मनुष्य की स्थिति कितनी है उसको लेना है। अब पंचेंद्रिय इतना अपना क्राइटेरिया है, तो कहते हैं उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती पंचेंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर, यानी अन्य गुणस्थान में चले गए, अभी दूसरे से पहले में आए और वापस जब दूसरे में लौटेंगे अधिक से अधिक काल के बाद, तो पंचेंद्रियों की जो स्थिति है उसके दोनों तरफ वो घटा देंगे। अभी वो देखते हैं अभी इसको। उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागरोपम काल है तथा पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का उत्कृष्ट अंतर सागरोपम शत पृथक्त्व है। वहां पूर्व कोटि पृथक्त्व और यहां सागरोपम शत पृथक्त्व का पंचेंद्रिय पर्याप्त लिए, वहां तो पंचेंद्रिय इतना ही क्राइटेरिया था। अब इसको सिद्ध करके बताएंगे। इनमें से पहले सासादन समय दृष्टि का अंतर कहते हैं, यानी सासादन समय दृष्टि कोई पंचेंद्रिय मिथ्यात्व में चला गया और वापस अधिक से अधिक काल में वो जब सासादन में आएगा उसका ये उत्कृष्ट काल बता, यानी अंतर का काल हो, काल नहीं, हाँ, अंतर। अनंत काल या असंख्यात लोकमात्र काल तक एकेंद्रियों में रहा हुआ कोई एक जीव असंगी पंचेंद्रियों में आकर उत्पन्न हुआ। यहाँ अधिक से अधिक काल घटा, अभी पंचेंद्रिय की अपनी प्ररूपणा चल रही है, तो पहले एकेंद्रियों में से लाया, यहाँ पर बहुत काल तक जो एकेंद्रियों में भटका था पंचेंद्रियों में आकर उत्पन्न हुआ। पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, कितनी पर्याप्ति कही, कौन सी नहीं ली? हमेशा तो हम छह पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, छह पर्याप्तियों के नाम याद है अश्विन भाई? हाँ बोलो। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, हाँ, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ऐसे छह पर्याप्ति है। यह असंगी जीव है इसलिए मन पर्याप्ति को नहीं लिया, तो पांच पर्याप्तियों को पूर्ण कर पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या वान व्यंतरों में आयु को बांध कर फिर विश्राम ले, क्रम से मरण कर भवनवासी या वान व्यंतर देवों में उत्पन्न हुआ। अभी सासादन में आया नहीं हो पहले तो, क्योंकि असंगी तो वो तो नहीं आएगा, तो पहले असंगी में लाकर फिर भवनवासी में उसको उत्पन्न कराया। छहों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, अभी ये जो भवनवासी या व्यानवंतर में जो उत्पन्न हुआ है तो छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पुनः सासादन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थान के अंतर का प्रारंभ दृष्ट हुआ, यानी सासाधन में तो आया है, तो सासाधन में से आगे चला जाएगा विमिथ्यात्व में, तो सासाधन का अंतर चालू हो जाएगा। पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हो, अपनी स्थिति प्रमाण परिवर्तित होकर आयु के अंत में सासाधन गुणस्थान को गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। इस प्रकार अंतर हम पश्चात स्थावर काय के योग्य आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक उनमें रहकर, किसमें रहकर, हाँ बोलो भाई, देवेंद्र भाई गाइड करेंगे अपने, एक इंद्रिय में रहकर आप क्या कहते हैं? देखो हाँ हाँ सासाधन में रहकर हमने देखा था सासाधन के हमने भाग देखे थे, पहला अवली का असंख्यात विभाग में मरे तो देव में जावे, दूसरे अवली के असंख्यात विभाग में ऐसे ऐसे हमने अलग अलग भाग देखे थे, मनुष्य में संधि पंचेंद्रिय असंघ पंचेंद्रिय फिर चतुरिंद्रिय तीन इंद्रिय दो इंद्रिय एक इंद्रिय, अब ये स्थावर काय ने एक इंद्रिय में जाने योग्य जो आवली का असंख्यात भाग है उसको कुछ कहना चाहते हैं। देखो वो स्थिति जो है उसकी हाँ जब प्रथम उपशम करेगा दोबारा, अभी यहाँ स्थिति यानी अभी ये पंचेंद्रियों की स्थिति भी ले सकते हैं इसमें, एक ही भाव की नहीं ले सकते, पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति लेना चाहिए। क्यों? उसकी कहाँ बात चल रही है, यहाँ अपने क्राइटेरिया अपना क्या है, पंचेंद्रिय होना चाहिए। अब वो देव है कि तीर्यंच है कि मनुष्य है, इसकी कहाँ बात है, पंचेंद्रिय रहते हुए अभी एक बार सासाधन में से गिरकर मिथ्यात्व में आ गया, अब वो पंचेंद्रियपना उसका चालू रहेगा और अंतिम जो उसका पंचेंद्रिय वाला होगा तो उसमें जब वो उपशम समय तो अंत अंत में प्राप्त करेगा, सासाधन में आएगा और अभी उसको पंचेंद्रिय का पर्याप्त हमको पूरी करनी है तो इसको एक इंद्रिय में डाल देना। सासाधन में वो एक इंद्रिय में कब चला जाएगा, जो एक इंद्रिय में जाने योग्य काल में मरेगा तब। तो यहाँ जो लिखा ना अपनी स्थिति प्रमाण परिवर्तित होकर, अपनी स्थिति यानी कौन सी स्थिति, पंचेंद्रियों की स्थिति, तो पंचेंद्रियों की स्थिति कितनी है, ये जो ऊपर देखा पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागरोपम, वो तो सामान्य के लिए ही देखा, और पंचेंद्रिय पर्याप्तों के लिए सागरोपम शत पृथक्त्व, शत यानी 100 यानी कुछ 100 सागर, क्या ले? जैसे हमने त्रसक की स्थिति कितनी देखी थी, साधिक 2000 सागर, वैसे यहाँ 1000 सागर और कुछ कोटि पृथक्त्व अधिक पंचेंद्रियों की, सामान्य पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त में पृथक्त्व 100 सागर, उल्टा हम पढ़ेंगे ना पृथक्त्व 100 सागर, हम मान लेते 700 सागर 800 सागर जो कुछ है, पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग हो सकता है पर समझाने के लिए पंचेंद्रियों की स्थिति बता रहे, पंचेंद्रियों में से जब अन्य एकेंद्रियों में चला जाएगा तब तक की स्थिति हमको काउंट करनी, ये स्थिति में परिवर्तित करना, क्योंकि यदि वो एक ही अगर भाव लेते देव का तो उसमें परिवर्तित होने का कहां सवाल था, और एक भाव में इतना ये 1000 सागर और पूर्व कोटि कैसे घटित होगा, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है अभी कितनी अधिक से अधिक स्थिति हो सकती है, तो जब पंचेंद्रियपना उसका समाप्त होने को आया अंतिम भव के अंत में तब जाकर वो दोबारा प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा, संसाधन में आ जाएगा। अभी उसको पंचेंद्रियपना समाप्त होना है तो पहले दूसरे तीसरे वो पहले भाग में नहीं मरेगा कहीं भी। तो जिस भाग में एकेंद्रियों में उत्पन्न होने योग्य उसका काल है उसमें मरेगा। संसाधन के काल की बात चल रही। अभी इसको मैं फिर दोबारा पढ़ती हूँ इस वाक्य को। ऊपर जो बात बताई ना, दो बातें बताई ऊपर सूत्र में, दो बातें बताई, इसलिए अपनी स्थिति कहा। पंचेंद्रिय जनरल है उनके लिए पृथक्व कोटि से अधिक 1000 सागर, और जो पंचेंद्रिय पर्याप्त है उनमें सागरोपम शत पृथक्व। अपनी स्थिति रिस्पेक्टिवली लगाना, क्योंकि जब हम सामान्य की बात करेंगे तो यहाँ अपर्याप्त का भी वह हो सकता है पंचेंद्रिय का बीच में एकाध, इसलिए वहां तो बढ़ जाते उसके, कितने 100 सागर लेने वो बढ़ जाते, क्योंकि सभी मिलकर 1000 सागर कर दिए उन्होंने और कुछ पूर्व कोटि कर दिए। ये हमने जो पहले काल देखा था ना पंचेंद्रियों की स्थिति का, अब ये जरा चौथी पुस्तक निकाल के देखना पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति, उसमें हम मार्गणा में काल देखा था हर एक का। तो देखो ये 9वें पॉइंट पर क्या है, उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अभी नीचे से 5वीं लाइन में फिर पढ़ूंगी, पुनः सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हुआ। जब सासाधन में आया तो उसका अंतर समाप्त हुआ, तो ये जो पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट स्थिति है उसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, यानी वो सासाधन के बाद अभी क्या होगा तो उसको अभी बता रहे। इस प्रकार इस गुणस्थान के अंतर का प्रारंभ यहाँ कहा, सॉरी ये तो स्टार्टिंग की बात है, मैं जहां से पढ़ रही थी वो स्टार्टिंग था। चलो मैं पढ़ लेती हूँ, यानी वो स्टार्टिंग कहाँ से लिया, पहले असंगी में आया था, फिर भवनवासी वनवंतर में चला गया, वहां उपशम समय तो प्राप्त किया, सासाधन में आया तो अंतर चालू हो गया। यहां से पढ़ा अभी जो प्रारंभ दृष्टि, अब जब वो मिथ्यात्व में जाएगा तो अंतर चालू हो गया। ये पहले वाले उपशम समय तो की बात चल रही है, अंतर चालू हो गया। अपनी स्थिति यानी जो अभी हमने पृथक्त्व कोटि पृथक्त्व और 1000 सागरोपम या पर्याप्तों में सागरोपम शत पृथक्त्व, अपनी स्थिति पूरी करके अब जो अंतिम उसका भोग होगा उसके अंत में टुवर्ड्स द एंड क्या किया, अपनी स्थिति प्रमाण परिवर्तित होकर आयु के अंत में सासाधन गुणस्थान को गया। यानी जो कोई उसकी अंतिम आयु थी उसके भी जब आयु समाप्त होने, अंतिम भव की आयु समाप्त होने को आई तब फिर उसने सासाधन गुणस्थान में आया। तो यहाँ तो बताया नहीं कि फिर उपशम किया और फिर आया, वो तो अभी हम जानते कि हम अभी थोड़े थोड़े प्रतिबुद्ध हो गए कौन से चार अंतर्मूर्त,
पहले तीन जो देवायु में किया वो
पहले तो 9 हो गए ना,
पहले तो पूरी असंगी की पूरी आयु निकाल रहा
है, संगी पंचेंद्रिय में आएगा तभी उसको गिना जाना।
पंचेंद्रियों की कितनी स्थिति है अभी असंगी में, कभी मरा देखो जरा असंगी में कितने काल के बाद मरा, तो उसकी आयु भी ऐड नहीं, पूरी स्थिति में से माइनस करना पड़ेगा। जो हम अंतर्मूर्त गिन रहे ना, कितना अंतर्मूर्त कम करना, असंगी कितने काल के बाद मरा देखो जरा, देखो क्या फिर पढ़ती हूँ मैं पहले वाला, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ एक अंतर्मूर्त, विश्राम लिया दूसरा अंतर्मूर्त, विशुद्ध हुआ तीसरा अंतर्मूर्त, क्योंकि विशुद्धि में वो तो आयु बांधेगा, संकलेश में आयु बांधेगा तो तिरंज में और जला जाएगा, फिर भवनवासी वानवंतर में आयु को बांधा, आयु बांधते ही मरता नहीं तो विश्राम लिया और मरा, तो ये सब मिलकर भी अंतर्मूर्त में ही मरा, वो ख्याल है ना। जब पर्याप्ति के बाद एक अंतर्मूर्त में उसने वो तो आयु भी बांध ली है, देव की आयु बांध ली है, और आयु बांधकर एक अंतर्मूर्त में मर भी गया और देव में उत्पन्न हुआ, वहां कम से कम आयु ली है उसकी असंगी की, क्योंकि हमको पूरी पंचेंद्रिय की स्थिति में से जो माइनस करने हैं सभी पॉइंट्स, वो मिनिमम लेना है, बराबर है। अंतर बढ़ाने का है। अब भवनवासी में जाते ही वो एक अंतर मुहूर्त में वो विशुद्ध वगैरह होकर उसने सम्यक तो प्राप्त किया और मेरे कर सासादन में गिरकर सासादन में आया और सासादन में से मिथ्यात्व में चला गया, फिर अंतर जाल हो गया। अब वो पंचेंद्रियों के भव करता रहा बीच में और फिर जाकर अंत में वो उपशम होकर फिर सासादन में आ गया, तब अंतर समाप्त हुआ। अब अंतर समाप्त होने के बाद कितना आगे काल रह गया उसके बाद अब पढ़ रहे, देखो नीचे से तीसरी लाइन। असंगी पंचेंद्रियों को कभी सम्यक तो नहीं होता।
हाँ
हाँ, क्योंकि हमको अंतर बढ़ाना है ना। आपका ऐसा प्रश्न है कि वहाँ उपशम सम्यक्त होने का कारण क्या है, जो प्रथम उपशम सम्यक्त में हमने सब जो कुछ कारण देखे थे वो विशुद्धि में वो तो सभी है, क्षोपशम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, सब कुछ होगा। प्रथम उपशम सम्यक्त के योग्य जो कुछ यथा योग्य कारण है, निमित्त भी और ये भी। हाँ, अभी वो भवनवासी में है तो वहाँ उसको देशना भी मिल जाएगी, पर्याप्त हो गया है वो, है ना। वहाँ तो अंतर्मूर्त में पर्याप्त हो जाते हैं, और जाते वो पहले प्रथम वहाँ सब अन्य देव उनका स्वागत करते, उनको मानस सम वो कुछ जो कुछ वहाँ के जो चैत्यालय वगैरह वहाँ ले जाते हैं, आदि आदि अनेक बातें होती है। वहाँ भी सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, तो उनका उपदेश भी मिलेगा उसको, जिसकी पात्रता है उसको वो निमित्त मिल जाएंगे। हाँ, अभी वो जो विशुद्धि पूर्व भव की देशना है ही नहीं, यहाँ उसी भव की मैंने कहा विशुद्धि हुई में सब कुछ आ गया जो कुछ है वो। एक इंद्रियों में गया है। हाँ, उसी भव की भवनवासी की। अभी पूर्व की देशना असंगी में भी कहाँ काम करेगी, असंगी में भी उसको देशना नहीं हो सकती है। सुनेगा मगर वो क्या समझेगा, मन है नहीं है, विचार नहीं करेगा कुछ, खाली आवाज सुनने से थोड़ी उसका क्या ख्याल आएगा उसको। देखो, यानी बिना देशना के तो होगा ही नहीं। अब जो कुछ है वो यथा योग्य उस अंतर मुहूर्त में सब कुछ हो जाएगा उसका। ये नीचे से तीसरी लाइन, पश्चात। अभी सासादन में आ गया है, अंतर पूर्ण हो चुका है, पश्चात अभी क्या लिखा है देखो। स्थावर काय के योग्य आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक उनमें रहकर, उनमें ने सासादन में रहकर, कौन सा काल, स्थावर काय के योग्य, क्योंकि उस काल में मरा तो स्थावर काय में जाएगा। देखो अभी हमने पहले देखा था ना, सासादन के स्टार्टिंग में मरता है कोई जीव। अभी मनुष्य तिर्यंश वगैरह लेना, देव होगा तो देव में नहीं जाएगा, परंतु पहले पहले भाग में मरता है। 35 पृष्ठ पर हमने देखा था इसको, देखो। अभी इतने दिन हो गए तो भूलना आसान है ना, माफ है। हाँ, वो ऊपर से दूसरा पैराग्राफ देखो, यहाँ पर उपर्युक्त अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है। सासादन में मरने वाला जीव कौन से भाग में मरकर कहाँ जाएगा, अब जिस गति में उसकी अपेक्षा वहाँ वो समझना। अभी नरक का नारकी है तो नारकी में भी नहीं जाएगा और देव में भी नहीं जाएगा, उसकी बात यहाँ नहीं है, क्योंकि सासादन में मरकर कोई नरक में जाता ही नहीं है। एक बात, जाएगा तो तीन गतियों में जाएगा, देह होगा, मनुष्य होगा या तिर्यंच होगा। तो अभी तो यहाँ तो बाद में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में मरेगा, क्योंकि अभी सम्यक तो में से गिर कर आया, अभी स्टार्टिंग में विशुद्धि ज़्यादा है उसकी, तो देह में चला जाएगा। फिर आगे के भाग में मरेगा तो मनुष्य में जाएगा, उसके आगे संगी पंचेंद्रिय, फिर असंगी पंचेंद्रिय, फिर चौथी इंद्रिय, ऐसे करते करते एकेंद्रिय। तो जो अंतिम भाग है एकेंद्रिय के योग्य भाग है, क्योंकि वो गिरने से वहाँ उसके संकलेश बढ़ रहे हैं, और ये सब मिलकर भी आवली का असंख्यात भाग है। देव में ही जाता है। अभी हमने सासादन का उत्कृष्ट काल देखा था, देवगति वाले को एक समय में मरकर देव हुआ था। देखो अब यहाँ पढ़ते हैं, जो 35 पेज में निकाला ना, 35 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ, वह इस प्रकार है। सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने के द्वितीय समय में यदि जीव मरता है तो नियम से देवगति में उत्पन्न होता है। तो खाली एक समय के लिए ये कंडीशन है क्या? तो ये आवली के असंख्यात भाग तक तो ऐसा ही होगा, एक समय से लेकर आवली के असंख्यात भाग तक। इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल देवगति में उत्पन्न होने के योग्य होता है, यानी वही वहाँ कहीं मरता है तो देवगति में जाता है। उसके ऊपर मनुष्य गति के योग्य काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है, आगे के अवली के असंख्यात भाग में मरेगा तो मनुष्य में उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से आगे संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, चतुरिंद्रिय, तीन्द्रिय, द्विंद्रिय और एकेंद्रियों में उत्पन्न होने योग्य होता है। यह नियम सर्वत्र सासादन गुणस्थान को प्राप्त होने वालों का जानना चाहिए। हाँ वही तो बताया, चारों गति में, यानी अभी नरक का वो तो देवगति का नियम ही नहीं, उस गति हाँ वे जहाँ जाने योग्य है। अभी नारकी जो सासादन के स्टार्टिंग में मरेंगे तो मनुष्य होंगे, और थोड़ा बाद में तो तिर्यंच होंगे, परंतु उनमें वो तो असंगी नहीं है, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय कुछ है ही नहीं उनके लिए, वे तो उनकी आयु बांधते नहीं है। तो उनके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज, मनुष्य या तिर्यंच, यानी जिस गति का जो जीव है और जहाँ जो बंधने योग्य प्रकृति है या वहाँ मरकर जहाँ जाने योग्य है उसमें अभी ऑप्शन है। तिर्यंच और मनुष्यों के लिए चारों गति का छूट होती है, अभी सासादन के लिए तीन, परंतु मरकर चारों गति में जा सकते हैं तो उसकी बात यहाँ लेते। नहीं नहीं उनके मरेगा तो भी मनुष्य में जाएगा उनके लिए, परंतु उनकी तो लेशा ही वही वैसी है ना। कहाँ पर? हाँ यथा योग्य, यानी जो जिस गति का जीव है वैसे वहाँ समझ लेना। नारकी का सासादन देखो ना कितने काल में मरा, वो नारकी का सासादन अंदर निकाल के देखो, हो गए ना नरक गति की बात। देशों ने कहा, ये 30 पृष्ठ पर है। अंत में उपशम समिति प्राप्त हुआ, उपशम समिति काल में एक समय अवशेष रह जाने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर निकला। एक समय में ही निकल सकता है वहां भी, 30 पृष्ठ पर आई हुई बात। और पहले भी वो दोनों गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर ये 26 पेज पर भी है। सातवीं पृथ्वी में तो मिथ्या तो में जाकर मरेगा, परंतु अन्य में चौबीस पृष्ठ पर भी है। चलो अपना ये बात चलो आगे बढ़ाते हैं। नहीं, कहाँ जाएगा वो उस गति पर निर्भर है, कौन सी वो प्रकृति बांधता है क्या है उसकी बात है। सासाधन का काल गति पर निर्भर नहीं है, एक समय से लेकर छह अवलि तक होता है सभी गतियों में। चलो अभी हम पढ़ते हैं आगे। कहाँ? हाँ, यहाँ हम आए ना अवली के योग्य। मरण करके स्थावर कायिकों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि पंचेंद्रियों का काल उसका समाप्त हुआ तो स्थावर कायिक में चला गया। इस प्रकार अवली के असंख्यात वे भाग, अवली का असंख्यात भाग तक वो सासाधन में रहा ना, तो अवली का असंख्यात वे भाग और नौ अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति ही इनका उत्कृष्ट अंतर है। अपनी स्थिति यानी किसकी स्थिति? पंचेंद्रियों की स्थिति, किसी एक भव की बात नहीं है, चारों गति के पंचेंद्रिय उसमें आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। अभी इसमें भी वो जब सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अन्य गुणस्थान में चला जाएगा, वहां से हम उसको अंतर कहना शुरू करेंगे। एकेंद्रिय की स्थिति में स्थित एक जीव असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, मन के बिना शेष पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या व्यान यंत्रों में आयु को बांध कर विश्राम ले, देवों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। तो पहले सम्यक मिथ्यात्व क्यों नहीं प्राप्त कराया? हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ नहीं भी जा सकता, क्योंकि इतना वो एक इंद्रियों में घुमा है ना, इतना काल एक इंद्रियों में कहा हो, तो उसके तो 28 सत्ता वाला ही जाएगा वहाँ। कोई 28 की सत्ता वाला सादी मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान से जा सकता है तीसरे में। अब यहाँ बहुत काल एक इंद्रियों की स्थिति में भटका है और फिर पंचेंद्रियों में आया हो, ऐसा जीव है तो प्रथम ऑप्शन समय तो प्राप्त करके पश्चात वो तीसरे में चला गया। चौथा गुणस्थान समाप्त हुआ उसका, ऑप्शन समय तो समाप्त हुआ और तीसरे में आया। पुनः मिथ्यात्व को जाकर, यानी अभी उसका अंतर शुरू हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का काल बीत जाने पर जब मिथ्यात्व में गया तब अंतर चालू हो गया। अंतर को प्राप्त हो अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, ये अपनी स्थिति यानी पंचेंद्रियों की स्थिति, उसके अंतर मुहूर्त काल अवशेष रह जाने पर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी इन बिटवीन वो तीसरे गुणस्थान में नहीं आया है। भले वो मिथ्यात्व में रहा, बार बार वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, जो कुछ होगा यथा योग्य, तीसरे में नहीं आया था इतने काल तक, फिर अंत में वो सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। तो सम्यक मिथ्यात्व के काल में तो कोई मरता नहीं है, पश्चात मिथ्यात्व को जाकर एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं कहा यहाँ कि सम्यक तो में आयु बांधी हो तो, क्योंकि अभी उसका पंचेंद्रियपना नष्ट होना है ना। सम्यक तो के साथ आयु बांधता तो सम्यक तो में जाकर मरता और फिर वो पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता, तो इसलिए वो पहले बीच में भले हुआ होगा परंतु अभी वो तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। मिथ्यात्व के साथ आयु भी बांधी, सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में आया और मरा, एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ। ऐसे इन 12 अंतर्मूर्तों से कम स्वस्थिति सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है। स्वस्थिति इसलिए कहा, एक तो पंचेंद्रिय जनरल लिया सामान्य और एक पंचेंद्रिय पर्याप्त लिया, तो उसमें उसमें स्थिति का जो अंतर है, फर्क है, उसको अपनी अपनी स्थिति समझना। जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार निर्देश होता है। इस न्याय से पंचेंद्रिय सामान्य की स्थिति, ये देखो बताए ना, पंचेंद्रिय सामान्य की स्थिति, ये किसी एक भव की बात नहीं थी, पूरे पंचेंद्रिय सामान्यपना, उसके ने पंचेंद्रिय है बस, संगी है कि असंगी है, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, उसकी बात नहीं। पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागरोपम प्रमाण होती है, और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की स्थिति शत पृथक्त्व सागरोपम प्रमाण होती है, यानी पृथक्त्व 100 सागर। अब ये तो दूसरे तीसरे की बात हो गई, अब असंयत की बात करेंगे। असंजद सम्मादिठी पहुड़ी जाव अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्छ नथ्य अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि से लेकर कौन से जीवों की बात चल रही है, पंचेंद्रियों की। अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। हमेशा कोई ना कोई जीव उसमें चौथा पांचवा छठे सातवें में हो गए ही। अब जो अंतर होगा तो एक जीव की अपेक्षा हो सकता है, तो उसकी बात करेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमुहूर्तम। अंतर्मुहूर्त कैसे घटित होगा, वो गुणस्थान छोड़ा, अन्य गुणस्थान में जाकर वापस आया, तो वो जघन्य अंतर होगा। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि इन असंयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवों का जीवों का अन्य गुणस्थान को जाकर सर्व लघु काल से लौटकर, कितना वो काल लगता है एक अंतर्मुहूर्त, अपने अपने गुणस्थान को आए हुए हुओं के अंतर्मुहूर्त मात्र अंतर पाया जाता है। अब उत्कृष्ट अंतर कहेंगे, उक्कस्सेन सागरोवम सहस्राणी पूर्वकोड़ी पुधत्ते भियाणी सागरोवम सदपुधत्तम। क्या कहते हैं, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर, उत्कृष्ट अंतर यानी क्या, चौथे में से गिरकर मिथ्यात्व में गया, पंचेंद्रियों की स्थिति प्रमाण भटका, और फिर जाकर अंत में फिर सम्यक्त को प्राप्त हुआ, तो हम उसको उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। अभी उसमें भी वो तो पंचेंद्रियों में उसको वहाँ चौथा गुणस्थान प्राप्त हो ना, वो देखते अभी कैसी कैसी बात है। उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक सहस्र सागरोपम तथा, यानी दोनों को मिला हुआ काल देखते, शत पृथक्त्व सागरोपम है, यानी तथा यानी दोनों को अलग अलग, तथा यानी दो बातें ना, सामान्य के लिए अलग और पर्याप्तों के लिए अलग, जो हमने पहली स्थिति देखी थी वही बात यहाँ बता रहे हैं। अब उसमें से कितना घटाना है उसको बताएंगे, क्योंकि जब सबसे पहले समय तो प्राप्त करेगा, फिर गिरकर अन्य गुणस्थान में चला जाएगा, तो अंतर चालू हो जाएगा, फिर अंत में फिर दोबारा समय तो प्राप्त करेगा। इनमें से पहले असंयत समय दृष्टि का अंतर कहते हैं। एकेंद्रिय भवस्थिति को प्राप्त कोई एक जीव असंगी पंचेंद्रिय समूर्छम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, अभी समूर्छन में आया हुआ, असंगी समूर्छन, पांचों पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, भवनवासी या वानव्यंतर देवों में आयु बांधकर विश्राम ले, मरा और देवों में उत्पन्न हुआ। फिर वहां पर छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, यानी वो चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ उसको। उपशम सम्यक्त के काल में छह अवलिया अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को गया और अंतर को प्राप्त हुआ। पूरा उपशम सम्यक्त का काल नहीं समाप्त करने दिया, क्यों, अंतर बढ़ाना है, इसलिए उसमें पहले गिर जाता है तो छह उंगली इसमें अंतर में बढ़ जाती है। पीछे मिथ्यात्व को जाकर अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, अपनी स्थिति यानी सामान्य पंचेंद्रियों में पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक हजार सागर और पंचेंद्रिय पर्याप्त में शत पृथक्त्व यानी शत पृथक्त्व सागरोपम। तो स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंत में उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, पुनः सासाधन गुणस्थान को गया और वहां पर देखो अभी उसका पंचेंद्रियपना समाप्त होना है। तो ये स्थिति पूरी होने को आई, उपशम सम्यक तो भी प्राप्त किया, फिर वहां से गिरकर सासाधन में गया, फिर वो एकेंद्रियों में जाने योग्य काल तक रहकर वहां मरकर एकेंद्रियों में चला गया। देखो उपशम सम्यक तो को प्राप्त हुआ है ना, 10 नंबर पर। पुनः सासाधन गुणस्थान को गया और वहां पर आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक रहकर स्थावर कायिकों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमको पंचेंद्रिय और चौथा गुणस्थान इसका अंतर देखना है। तो उसका चौथे गुणस्थान भी छूट गया सासाधन में और पंचेंद्रियपना भी अभी छूटेगा मरते ही वहां। इस प्रकार इन 10 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति प्रमाण उक्त असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब वो एकेंद्रियों में कितने काल भटकेगा, एकेंद्रिय हाँ, मुझे लगा कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहते हैं क्या, नहीं अभी वो सम्यक दृष्टि हुआ है। हाँ सम्यक तो प्राप्त किया है उसने और वो अर्ध पुद्गल में से भी यहाँ ये शत पृथक तो सब निकल गए हैं, सागरोपम शत पृथक तो ये उत्कृष्ट अंतर होता है। शंका, पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का जो सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण उत्कृष्ट अंतर बताया है उसमें देशों ने ऐसा पद और कहना चाहिए, थोड़ा कम लिखना था उसमें। तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्त की देशों ने स्थिति भी सागरोपम शत पृथक्त्व प्रमाण ही होती है, कुछ कम करो तो भी वो सागरोपम शत पृथक्त्व ही होती है, यानी वो देशों ने पढ़ा उसी में वो सब काउंटेड है। शंकाकार पूछता यह भी कैसे जाना जाता है, समाधान क्योंकि सूत्र में देशों ने इस वचन का अभाव है, क्योंकि सूत्र तो भगवान के वचन है और वे स्वयं अपना वो प्रूफ है, उनके लिए किसी और अन्य प्रूफ की जरूरत नहीं है। ये बात पहले भी बहुत बार आई थी। अब शंका, संगी सम्मूर्छम पंचेंद्रियों में उत्पन्न कराकर और सम्यक्त्व को ग्रहण कराकर मिथ्यात्व के अंतर को प्राप्त क्यों नहीं कराया, क्या कहते हैं, पहले असंगी में जन्म लिया फिर भवनवासी में गया फिर वहां से आयु स्टार्ट की, तो कहते हैं डायरेक्ट पंचेंद्रियों में ही उत्पन्न होता है और फिर वहां सम्यक्त्व को ग्रहण करके मिथ्यात्व में लौट आता, अंतर चालू हो जाता। तब उसका उत्तर सुनो, नहीं, क्योंकि संगी सम्मूर्छम पंचेंद्रियों में प्रथमोपशम सम्यक्त्व के ग्रहण करने का अभाव है। वेदक भी काहे से करेगा, एकेंद्रियों में इतने काल तक भटक कर आया है उसकी, वो भी कैसे करेगा, सादी वाला सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है बोलो जी, नहीं नहीं स्टार्टिंग से प्रथमोपशम सम्यक्त्व कौन कौन से जीव प्राप्त कर सकते हैं, देखो चारों गति वाला भव्य होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, कंडीशन है आवश्यक, सादी हो अनादि हो। जो सम्यक दृष्टि है वेदक है वो तो क्षायिक तो हो सकता है, औपशमिक है वो वेदक तो हो सकता है, परंतु हमारे क्या प्रश्न क्या है, प्रथमोपशम के लिए क्या कंडीशन है, द्वितीय ऑप्शन वाला भी वो क्षोपम में से द्वितीय ऑप्शन हो सकता है, परंतु प्रथम ऑप्शन कौन होगा? जो मिथ्या दृष्टि है वही प्रथम ऑप्शन होगा। तो चारों गति वाला, भव्य और फिर मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि एक क्राइटेरिया होगा उसकी पात्रता हो जाएगी, भव्य मिथ्या दृष्टि और फिर संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक। अब ये मनुष्य और तीरियंचों के पहले, उसके पहले पर्याप्त होना आवश्यक है, कोई भी हो चारों गति का होगा, पर्याप्त होना आवश्यक है। और मनुष्य और तीरियंचों में गर्भज होना आवश्यक है। ये जो समुरुषन की बात की है उनको प्रथम ऑप्शन सम्यक तो नहीं होता, इसलिए गर्भज ऐसा भी वहां का। फिर वो विशुद्धि वगैरह वगैरह आगे की बात, सब साकार उपयोग में होता है, जागृत अवस्था में होता है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हमने देखे थे पहले। चौथे में मरने वाला कैसा जाएगा? समूरचन में नहीं जाएगा। भोग भूमि में तो दो वेद ही है, वहाँ समूरचन जीव नहीं होते। भोग भूमि में होते क्या? गर्भज है हाँ। और सम्यक दृष्टि तो पुरुष वेद में उत्पन्न होता है, वो तो नपुसक वेद हो जाता है समूरचन वाला हमको बहुत सारे ऑप्शंस ख्याल आते हैं परंतु वो सब रूल आउट होते हैं। उनका एक वाक्य होता है, कहीं अंदर घुसने को जगह नहीं है। ये हमें अपने टटोलना चाहिए, अरे हम कहाँ गलत है, क्योंकि वो तो वचन बिल्कुल सत्य है वहाँ। फिर शंकाकार कहता है, वेदक सम्यक्तु को क्यों नहीं प्राप्त कराया, उपशम सम्यक्तु की बात क्यों की? कहते नहीं, क्योंकि एक इंद्रियों में दीर्घ काल तक रहने वाले, और वो उद्वेलना करा, उद्वेलना हुआ है, उद्वेलना, उद्वेलना की है सम्यक तो और सम्यक मिथ्या तो प्रकृति की जिसने, ये संस्कृत में ऐसी भाषा होती है, ऐसा जीव, ऐसा कहिए, यानी एक इंद्रियों में जाने वाले और बहुत काल रहने वाले जीव, भले उन्होंने पहले कोई सम्यक तो प्राप्त किया भी होगा, तो उनकी जो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियां हैं उनकी उद्वेलना होती है, उद्वेलना संक्रमण को कहते हैं। परंतु ये संक्रमण उल्टा है, पहले मिथ्यात्व नाम की एक प्रकृति थी और उसमें से तीन प्रकृतियां बनी थी, क्योंकि मिथ्यात्व के ही कुछ परमाणुओं का अनुभाग अत्यंत हीन हुआ था और उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और फिर उसका अनुभाग और अनंत गुणाहीन होकर सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन प्रकृतियां बनी थी। जब एक इंद्रियों में चला जाता है और बहुत काल वहाँ रहते हैं तो उल्टा उस संक्रमण चालू हो जाता है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप से परिणमित हो जाती है और एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति रह जाती है, अनादि मिथ्यादृष्टि जैसा हो जाता है। यानी अभी उसके मोहनी की कितनी प्रकृति रहेगी सत्ता में, मोहनी की 26, चारित्र मोहनी की 25 और 1। तो इसलिए कहते हैं जिसने उद्वेलना की है ऐसे जीव के वेदक सम्यक्त्व का उत्पन्न कराना संभव नहीं है, उसको तो वेदक हो नहीं, जिसके तीन है सत्ता में और वो जिसका काल थोड़ा रह गया है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का सागरोपम जितना, तो वो दोबारा प्रथम उपशम करता है और उसके पहले पहले वेदक सम्यक्त्व हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में कंडीशन क्या डाली थी, एक इंद्रियों में बहुत काल तक भ्रम कर आया हुआ है, यानी वो हमें लगता है ऐसे क्यों, एक भोग किया तो भी पंचेंद्रियपना चालू हो जाता है, तो ये कंडीशन क्यों डाली? तो इसलिए डाली कि वहाँ उनको तो फिर जब से पहले में पहले उनको सम्यक तो प्राप्त होगा तो प्रथम उपशम ही होगा, भले पूर्व में कभी किया होगा तो भी उसका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, फिर दोबारा प्रथम उपशम होगा, ऐसा आता है शास्त्र में। ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल है ना, उसमें ऐसा प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्योंकि दो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के बीच में काल मिनिमम कितना देखा हमने, पल्ले का संख्या तो भाग, और ऐसे भी प्रथमोपशम सम्यक्त्व कितने बार हो सकते हैं, तो असंख्यात बार, जो पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात बार, इतने बार होकर छूट सकता है अब ये तो चौथी की बात की हूँ, अब संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कह दी, चौथे पांचवे छठे सातवें का हमको अंतर देखना है यहाँ। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर देख रहे हैं। एकेंद्रिय की स्थिति को प्राप्त एक जीव, उसकी वो वेलांटी नहीं दिख रही है, जाव जैसा दिख रहा है। आगे भी संगी पंचेंद्रिय सबके वो सके ऊपर की बिंदी भी चली गई है, प के ऊपर की भी, च का काना, ये सब। हाँ, प्रिंटिंग ही ऊपर वो लाइट हो गया ऊपर का। उसको ठीक कर देना, पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ। अभी संगी पंच संगी पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ है। हाँ, एक इंद्रिय वाला तीन पक्ष तीन दिवस और अंतर्मूर्त से प्रथमोपशम सम्यक्त को तथा संयमा संयम को युगपत प्राप्त हुआ। ये पहले हमने दो उसमें देखे थे ना, दो मत देखे थे, एक में तो दो मास और कुछ देखा था, और एक मत था तीन पक्ष तीन दिवस और अंतर्मूर्त। प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ साथ पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया। प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में छह आवलिया अवशेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हुआ। किसका अंतर शुरू हुआ? हाँ, संयता संयत का। मिथ्यात्व को जाकर अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, अभी मिथ्यात्व के साथ अपनी स्थिति, कौन सी स्थिति? हाँ, पंचेंद्रियों की। अंतिम पंचेंद्रिय भव में, देखो यहाँ स्थिति के अंत में ने अंतिम पंचेंद्रिय भव में, ऐसा ही वहां वाक्य नहीं लिखा था, परंतु हमने ऐसा ही अर्थ समझा था ना, अपनी स्थिति प्रमाण परिवर्तन कर जो वहां लिखा था। तो अंतिम पंचेंद्रिय भव में सम्यक्त्व को ग्रहण कर दर्शन मुनि का क्षय कर और संसार के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर, यहाँ गैप नहीं चाहिए, यानी कोई शब्द नहीं है वहां पर, क्या कहते हैं? अंतिम पंचेंद्रिय भव में क्या किया उसने? सम्यक्त्व को ग्रहण किया, यानी फिर प्रथमोपशम किया, फिर वेदक किया, फिर क्षयिक होगा, वो सब उसमें आ गया। दर्शन मोहन का क्षय कर और संसार के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशेष रहने पर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, यानी पहले चौथे में प्राप्त हुआ था, फिर क्षयिक समय दृष्टि हो गया, और जब ये अंतिम जो उसका संसार का अंत आया तब वो पांचवें में आया। पश्चात अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत हुआ। इसमें आता है ना, बहुत बार हजारों बार होता है, फिर क्षपक श्रेणी योग्य परिणाम करेगा, उसमें जो जो अंतर्मूर्त बीच में वो सब मिलकर भी अंतर्मूर्त होगा। यहाँ तो दो बार ही लिखा है, परंतु हमें तो समझना चाहिए कि बहुत बार होता है। अप्रमत्त संयत इनमें अपूर्व करणादि संबंधी ऊपर के छह मूर्तों को मिलाकर, मूर्त ने अंतर्मूर्तों को ऊपर क्या लिखा है, तत्पजन काल संकेत जुगनो, ये नहीं कहाँ गया, वरी छह मुहूर्ता, छह मुहूर्त ने छह अंतर्मूर्त मिलाकर तीन पक्ष तीन दिवस और बारह अंतर्मूर्तों से कम, अंतर्मूर्त लिया ना यहाँ, अपनी स्थिति प्रमाण संयता संयतों का उत्कृष्ट अंतर है। पक्ष ने पंद्रह दिया, पखवाड़ियों, हाँ, महीने के दो भाग करते उसको पक्ष कहते हैं, टू वीक्स। पक्ष के बहुत अर्थ होते हैं, हाँ, अच्छा, कांग्रेस और भाजपा याद आ गए हैं, और पक्ष ने पंख, पंख को भी पक्ष कहते हैं, साइड है, आपने किसका पक्ष लिया है, ऐसा भी होता है ना, पक्ष वाला वो पक्षी कहता है, कहलाता है, पंखी जिसको कहते हैं। अब हो गया, ये देखो शंका, उक्त जीवों को एकेंद्रियों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया? संयता संयत के बाद वो एकेंद्रियों में क्यों नहीं भेजा सके थे? समाधान, संयता संयत का अंतर लब्ध होने के पश्चात ऊपर सिद्ध होने तक के काल से मिथ्यात्व को जाकर एकेंद्रियों में आयु को बांध कर चाहिए, बांध कर हुआ है, बांध कर उनमें उत्पन्न होने का काल संख्यात गुणा है। इनका कहना है उसमें संयता संयत से गिरकर कोई एकेंद्रियों में नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल है तो ऐसा हो ही सकता है किसी जीव का। परंतु कोई जीव है, अभी यहाँ उसने संयमा संयम को प्राप्त किया, उसके पहले वो सम्यक दृष्टि हुआ, क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, संयमा संयम को प्राप्त हुआ, और फिर वो अंतर्मूर्त में आगे भी प्रमत्त हुआ और मोक्ष चला गया। तो ये सब करने के लिए उसके इतने अंतर्मूर्त लगे, यहाँ मोक्ष को चला गया, बराबर। अब कहते हैं ऐसा ही कोई अन्य जीव, वो संयता संयत को प्राप्त हुआ, और यदि उसको, यहाँ क्या लिखा देखो, मिथ्यात्व में जाना, यानी वो संयता संयत को गया है तो अंतर्मूर्त तो वहां रहेगा ही, और अभी संयता संयत से छठे सातवें में, यानी सातवें में जाना जल्दी हो सकता है, विशुद्धि के साथ चल रहा है, पांचवें में गया और छोटे काल में वो सातवें में गया, ऐसा हो सकता है। परंतु जिसको पांचवें में से भी वापस पहले में आना है तो विशुद्ध परिणाम के साथ स्टार्टिंग है उसकी, तो वहां जाने के बाद फिर संकलेश परिणाम हो गए और फिर वो एकेंद्रिय में, सॉरी मिथ्यात्व में आ जाएगा, यानी उसके लिए कुछ काल लगेगा। उसमें मिथ्यात्व में आने के बाद एक अंतर्मूर्त के बाद आयु बांधेगा, वो भी आयु कैसी, एकेंद्रियों के योग्य। तो ये जो कुछ काल है उसका, फिर मरेगा, आयु को बांधेगा, फिर अंतर्मूर्त रहेगा, फिर मरेगा। तो ये सिद्ध जाने के काल से ये पूरा काल बड़ा हो जाता है। यदि इसको हम बड़े काल को लेते हैं तो अंतर छोटा होता है, और हमको तो संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर देखना है। मिथ्यात्व में यहाँ प्रश्न क्या है, क्यों ले रहे हो? कोई जीव जा सकता है कि नहीं जा सकता है केंद्रीय में? क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं, जो पंचम गुणस्थान में गया है, पंचम गुणस्थान से लौट कर फिर गिर कर एकेंद्रियों में गया है, और एकेंद्रियों में आयु बांधी और चला गया, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वही उसी को, वही तो कहा यहाँ, ऐसे अगर हम जीव लेते हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन भी चला जाए उसमें कोई बात नहीं है, आप कहते वो ठीक नहीं है, वही क्यों लिया उसकी मैं कारण मीमांसा इसके अनुसार कर रही हूँ। अंतिम भव ही क्यों लिया है, उसको उसी भव में मोक्ष क्यों भेजा है? यदि उसको एकेंद्रियों में जाना, कोई अन्य जीव लेते हैं जो एकेंद्रिय में जाने वाला है, वो क्या करेगा? संयता संयत को प्राप्त हुआ, कुछ एक अंतर्मूर्त रहा, फिर मिथ्यात्व में चला गया, मिथ्यात्व में जाकर कुछ काल रहा, और फिर वो एकेंद्रिय जितनी आयु बांधी उसने, एकेंद्रिय आयु को बांधने के लिए एक अंतर्मूर्त, आयु बांधने के पश्चात और एक अंतर्मूत रुकेगा वहां, इमीजिएट तो मर नहीं सकता, तो फिर मरेगा। तो ये जो काल है वो लंबा हो जाता है, और हमको तो संयता संयत को प्राप्त होने के बाद कम से कम काल रखना है उसको। यदि यहाँ कोई पांचवी गुणस्थान में मरता है, देव होता है, तो भी पूरी आयु देव की वो तो पंचेंद्रियों में से, उसके अंतर में से घटानी पड़ेगी। हमको तो अंतर उत्कृष्ट चाहिए, अपने दूसरे कोई अपना क्राइटेरिया क्या है, अधिक से अधिक अंतर हमको सिद्ध करना है। पांचवें गुणस्थान को प्राप्त होने के पश्चात वाला जो कोई प्रोसेस है, उसको मिथ्यात्व में जाकर एकेंद्रियों में जाना है, या फिर उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, हमको ऐसा चाहिए जीव कि अभी उसका बाद में काल कम से कम रहा है, इसलिए एकेंद्रियों में जाने वाले को पंचम गुणस्थान में आने के पश्चात वाला जो काल है वो अधिक बढ़ता है, इसलिए उसको नहीं लेकर इस जीव को लिया कि जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। ख्याल आता है? हाँ। यानी अन्य सब पॉसिबिलिटी जो कुछ है, बहुत सारे बीच वाले तो बहुत सारे हो गए ना, वेरिएशंस, बीच वाले वेरिएशन से बहुत होंगे। पंच पांचवें गुणस्थान में गया, वहीं मर गया, देव में चला गया, मगर वो पांचवें गुणस्थान का अंतर तो समाप्त हुआ। और ऐसे बार बार भी करेगा वो, फिर देव में से आएगा मनुष्य में, फिर पांचवा प्राप्त करेगा, फिर जाएगा देव में, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार हो सकता है उसका। तो उसकी अपने को क्या देखना है, मैक्सिमम अंतर, अंतर मैक्सिमम देखना है, उत्कृष्ट अंतर की बात हो रही है। देखो यहाँ फिर पढ़ती हूँ, ये क्या लिखा उन्होंने, समाधान फिर पढ़ती हूँ। संयता संयत का अंतर लब्ध होने के पश्चात, लब्ध होने के पश्चात यानी वो पांचवें में आ गया, ऊपर सिद्ध होने तक के काल से, ये हमको इसको एक काल लिखेंगे हम, एक जीव कोई जो है ए नाम का, उसको जितना काल लगेगा पांचवें गुणस्थान में आने के पश्चात सिद्ध होने के लिए जितना काल लगेगा, उससे उस काल से अभी दूसरे काल की कंपैरिजन करते हैं, जो काल उससे बड़ा है कौन सा, कि कोई अन्य जीव, बी नंबर का जीव, कोई बी वाला जीव मिथ्यात्व को जाकर एकेंद्रियों में आयु बांधकर, आयु को बांधकर उनमें उत्पन्न होने का काल, एकेंद्रियों में आयु को बांध करने, वो पांचवे वाला मिथ्यात्व में गया, फिर उसके परिणाम ऐसे संक्लेश होके कि उसने एकेंद्रिय की आयु बांधी, तो एक इंद्रिय की आयु बांधी, फिर अंतर्मूर्त बांधने के लिए गया, बाद में विश्राम के लिए गया, वगैरह वगैरह बांधकर उनमें उत्पन्न होने का काल संख्यात गुणा है। ए वाले जीव को जितना काल लगा, ये बी वाला जीव उसको संख्यात गुणा काल लगा, मान लेते 10 गुणा 15 गुणा जो कुछ है, तो अंतर के पश्चात वाला काल बढ़ जाता है तो अंतर कम हो जाता है। हमको अंतर बड़े से बड़ा लेना है, इसलिए एकेंद्रियों में नहीं उत्पन्न कराया। यानी एकेंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है कोई अन्य जीव, उसकी ना नहीं है, कोई देव में जाएगा, कोई एकेंद्रियों में जाएगा, जो कुछ यथायोग्य जाएगा उसकी ना नहीं है। हमको ऐसा जीव लेना है कि जिसमें उत्कृष्ट अंतर सिद्ध होता है। नहीं, लगातार पंचेंद्रियों में रहने वाले जीव की ये बात चल रही है। उसके बाद जो एकेंद्रियों में जाता है, कोई जीव जा सकता है, मुनि भी होकर बाद में एकेंद्रियों में भी चला जावे, ऐसे भी जीव होते हैं ना। यहाँ हमको उत्कृष्ट अंतर सिद्ध करना है, लगातार पंचेंद्रियों में रहते हुए पांचवें गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर। ये उत्कृष्ट अंतर में अभी उसने देव मनुष्य के कुछ भोग किए होंगे बीच में मिथ्यात्व में रहकर, वो पंचेंद्रिय रहा, इतना ही बात है। पंचेंद्रियपना उसका नष्ट नहीं हुआ था, और जब वापस उसने अंतिम भव में, मनुष्य भव में पांचवा गुणस्थान प्राप्त कर सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। ख्याल आता है कुछ? हाँ, बहुत हेवी हो गया। हाँ। इसी प्रकार प्रमत्तादि उपरीतन गुणस्थानवर्ती जीवों के भी यही कारण कहना चाहिए। यही कारण इन्हें, वे भी जीव ऐसे कोई हो सकते कि मुनि है, मिथ्यात्व में चला जावे, एक इंद्रियों में भी चला जावे, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल उसके सिवा तो सिद्ध नहीं होता। हमने तो देखा था उपशम श्रेणी मानने वाले भी जीव वहां से कहां कहां वो जाइए, अर्धपुद्गल परावर्तन काल अनंत काल है, तो वो तो त्रसों में रहेंगे नहीं, एक इंद्रियों में तो चला जाएंगे, बहुत से काल तक एक इंद्रियों में बिताएंगे। उसकी ना नहीं कह रहे, जब हमको उत्कृष्ट अंतर देखना है तो उसके पश्चात वो सिद्ध होने का काल छोटा है, और संक्लेश होकर नीचे की आयु बांधकर उसमें भटकने का वो, तो वो काल बड़ा हो जाता है, तो अंतर कम हो जाता है। अब प्रमत्त संयत की बात करेंगे। प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, एकेंद्रिय स्थिति को प्राप्त एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, और गर्भाधि 8 वर्षों से उपशम सम्यक्त और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। देखो एकेंद्रियों में भटक, बहुत काल एकेंद्रियों में भटका हुआ जीव, या अनादि का भी ले सकते हैं, मनुष्य में आया 8 वर्ष में सम्यक्त और संयम, हाँ एक साथ अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त हुआ, पश्चात प्रमत्त संयत हुआ, पीछे नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ। छठे का अंतर देख रहे हैं ना, तो पहले सातवें में आता है कभी भी, और फिर छठे से नीचे आ गए तो अंतर चालू हो गया। अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम भव में मनुष्य हुआ। अपनी स्थिति यानी पंचेंद्रिय की स्थिति, यानी उसमें देव मनुष्य वगैरह जो कुछ यथायोग्य है मनुष्य हुआ। फिर दर्शन मोहनीय का क्षय कर अंतर्मूर्त काल संसार के अवशिष्ट रहने पर अप्रमत्त संयत होकर पुनः प्रमत्त संयत हुआ। इस प्रकार अंतर्लब्ध हुआ, यानी जब अंतिम भव में कुछ काल एक अंतर्मूर्त मोक्ष जाने को बाकी था, तब वो सातवां गुणस्थान प्राप्त किया और फिर वहां से वो छठे में आए। अभी उसके पहले वो दर्शन होने का क्षय वगैरह जो कंडीशन वो पहले ही उन्होंने कर ली थी, क्योंकि बाद में हमको काम काल गवाना नहीं है, तो उसके पहले जो यथायोग्य सम्यक तो था वो सब प्राप्त करना, वो जो कुछ है उसकी बात नहीं लिखी, परंतु वो वेदक होगा, वेदक में शिक्षायिक होगा, वो सब कुछ अनंत अनुबंधी का विसंयोजन किया करेगा, फिर दर्शनों का क्षय करेगा, वो तो एक में लिखा उन्होंने क्षय कर दिया, तो उसमें जो कुछ यथायोग्य बातें वो सब होगी वहां पर। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पुनः अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त मिलाकर 8 वर्ष और 10 अंतर्मूर्तों से कम अपनी स्थिति यानी पंचेंद्रियों की स्थिति प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। अब अप्रमत्त संयत का बरे, अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, एकेंद्रिय की स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भाधि 8 वर्षों से ऊपर उपशम सम्यक्त तथा अप्रमत्त गुणस्थान को युगपत प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थान का आरंभ दिखाई दिया, पश्चात अंतर को प्राप्त हो, क्योंकि छठा सातवां करता रहेगा, जब लास्ट में सातवें में से छठे गिरकर आगे चला जाएगा तो उसका अंतर चालू हो जाएगा। अंतर को प्राप्त हो अंतिम पंचेंद्रिय भव में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रियों का लास्ट भव लिया, पंचेंद्रिय की स्थिति का जो है, दर्शन मुनि का क्षय कर संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ। अप्रमत्त होते उसका अंतर समाप्त हो गया, पश्चात प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त मिलाने पर 8 वर्ष और 10 अंतर्मूर्तों से कम पंचेंद्रिय की स्थिति अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है। अब 4 उपशमों की बात करेंगे, चदुन्नम उवसाम गाणम नाना जीवम पड़ी ओघम। पड़ी शब्द कैसा पहले आया था, नाना जीवन, ठीक है देखते हैं हम क्या लिखते हैं। चारों उपशामकों का अंतर नाना जीवों की अपेक्षा ओघ के समान है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्त्व, इस प्रकार ओघ से इनमें कोई भेद नहीं है। अब एक जीव की अपेक्षा, यह संगी पंचेंद्रियों में होता है और वो भी पर्याप्तों में होते हैं, यानी ये जो इनके ओघ में जो बात है वही यहाँ पे भी लागू हो जाएगी। उपकस्यन सागरोम सहस्रानि पूर्वकोड़ी पुदत्ते नभ्याणि सागरोम सदपुदत्तम। नहीं, एक बीच में रह गया, एक जीव पड़ुच्च, एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमोत्तम। चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अपूर्वकरण संयत आदि 3 उपशामकों का ऊपर चढ़कर नीचे उतरने पर जघन्य अंतर होता है। आठवें का जघन्य अंतर, चढ़ने वाला आठवां, फिर नौ दस ग्यारह, फिर दस नौ और फिर आठवें में आया, वो उसका जघन्य अंतर। नौवे के लिए दस ग्यारह फिर दस, और नौ को आते ही अंतर समाप्त हुआ। दसवें के लिए अंतर ग्यारहवां गुणस्थान, ग्यारहवें के गुणस्थान के लिए अंतर, हाँ ग्यारह से दस नौ आठ सात और फिर चढ़ेगा, ग्यारहवें में आते ही वो उसका अंतर हो जाएगा। देखो किंतु उपशांत कषाय का नीचे उतरकर पुनः सर्वजघन्य काल से उपशांत कषाय को प्राप्त होने पर जघन्य अंतर होता है। इमीडिएट दोबारा वो श्रेणी चढ़ता है उपशम श्रेणी, तब जघन्य अंतर होगा। अब उत्कृष्ट अंतर बता रहे, उक्कसेन सागरोम सहस्राणी पूर्वकोड़ी पुदत्तेन अभियाणी सागरोम सदपुदत्तम। ये पंचेंद्रिय है इसलिए ये उत्कृष्ट अंतर कहा। पंचेंद्रिय में आते ही जब पहले उपशम श्रेणी मांडी है, जब पंचेंद्रिय की स्थिति पूरी होने को आई तब वापस उपशम श्रेणी मांडेगा, उसकी बात है। क्योंकि सभी जीवों की अपेक्षा हमने देखा था, कितना देखा था, उत्कृष्ट अंतर दो उपशम श्रेणियों में, हाँ एक जीव की अपेक्षा। पंचेंद्रिय की बात नहीं है, अर्ध पुद्गल पर आवे उसमें कुछ घटा देना पहले का और बाद का, देशों कर देना उसमें। पहले भाव में जब उसने जब कभी समय प्राप्त किया, उपशम श्रेणी चढ़ी, गिर गया, आगे जो कुछ यथायोग्य बीच में हुआ, अर्ध पुद्गल परावर्तन में अंतिम में उसी ने उपशम श्रेणी मांडी, चढ़कर उतरते ही वो क्षपक श्रेणी मानकर मोक्ष चला गया, तो अंतर बढ़ गया। अब यहाँ तो पंचेंद्रिय की बात है, इसलिए पंचेंद्रिय की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको लेना है। यहाँ लिखा ना नीचे ना, चारों उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक सागरोपम सहस्र और सागरोपम शतपृथक्त्व है। ये पर्याप्तों के लिए सागरोपम शतपृथक्त्व है। अब उसको बताएंगे कैसे सिद्ध होता है। एकेंद्रिय स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भादि आठ वर्षों से विशुद्ध हो, उपशम सम्यक्त्व को और अप्रमत्त गुण स्थान को युगपत प्राप्त होता हुआ अंतर्मूर्त से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, पश्चात अनंतर्मूर्त से अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का विसंयोजन करके विश्राम ले, दर्शन मुनि का उपशम कर। ये कौन सा उपशम है उसका? द्वितीय उपशम। अंतर पहले एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया, फिर दर्शन मुनि का उपशम किया, फिर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी परावर्तन सहस्रों को करके, यानी हजारों बार छठे सातवें में झूल कर उपशम श्रेणी के प्रायोग्य अप्रमत्त संयत हुआ, यानी उपशम श्रेणी के चढ़ने के पहले जो अध प्रवृत्त होता है, अध प्रवृत्त करण जिसको सातिशय अप्रमत्त कहते हैं, वह हुआ। पश्चात अपूर्वकरण संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, उपशांत कषाय, अभी लौटकर फिर आने वाला नीचे, फिर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण संयत, अपूर्वकरण संयत हो नीचे उतरकर पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर। नीचे उतरा अभी जो पंचेंद्रियों की जो उत्कृष्ट स्थिति उतना उसका परिभ्रमण होकर अंतिम भव में मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, पश्चात दर्शन मुनि का क्षय कर संसार के अंतर्मूर्त मात्र अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तन करो नरावर्तन हुआ। परावर्तन सहस्रों का करके, सहस्रों को ऊपर आया था छह नंबर में, और वे स्रो के ऊपर भी बिंदी चाहिए, सहस्रों को इन्हें सहस्रों को करके उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। तो अंतिम भव लिया है तो उपशम श्रेणी चढ़ने से काम नहीं होगा, अंतर तो समाप्त हुआ पर वो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरेगा और वापस शपक श्रेणी चढ़ेगा। पश्चात अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, उपशांत कषाय, अभी लौटकर सूक्ष्म सांप्राय संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, अपूर्वकरण संयत, अप्रमत्त रहेगा, संयत चाहिए, यंत हुआ है, संयो करना उसको, य की बिंदी निकालकर स के ऊपर लगाओ, अप्रमत्त संयत, फिर प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत हुआ। इसके ऊपर क्षपक श्रेणी संबंधी छह अंतर्मूर्त होते हैं, यानी वो आठवें का, नवे का, दसवें का, बारहवें का, जो सहयोगी अयोगी। इस प्रकार 30 अंतर्मूर्त और 8 वर्षों से कम पंचेंद्रिय स्थिति प्रमाण अपूर्वकरण का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये अपूर्वकरण की बात की। इसी प्रकार से शेष तीनों उपशामकों का भी अंतर कहना चाहिए। जैसे यहाँ 30 अंतर्मूर्त लिए तो नौवे के अंतर के लिए वो कम करेंगे ना, उसमें नौवे का अंतर। विशेष बात यह कि उनके क्रमशः 28, 26 और 24 अंतर्मूर्तों से अधिक 8 वर्ष कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण अंतर होता है। अब क्षपकों की बात करेंगे। चतुर्णम खवा अजोगी केवली ओगम, चारों क्षपक और अयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास अंतर है। उपशम श्रेणी के लिए हमने वर्ष पृथक्त्व देखा था, क्षपक श्रेणी में 6 मास। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। निरंतर क्योंकि उसमें लौट कर वापस नहीं आता उसी में, इसलिए निरंतर का। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा से कोई भेद नहीं है। अब सजोगी केवली ओघम, सहयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है क्योंकि नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। नाना जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है ने हमेशा कोई ना कोई जीव उस गुणस्थान में रहेंगे, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है ने वो सहयोगी गुणस्थान छोड़ा तो वापस उसमें आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये अंतर नहीं है, निरंतर है। इस प्रकार ओघ से कोई भेद नहीं है। अब पंचेंद्रियों की बात होगी, अभी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों की बात करेंगे। पंचेंद्रिय अपज्जतानम बेइंद्रिय अपज्जतानम भंगो, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों का अंतर द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के समान है। तो नाना जीवों की अपेक्षा कितना अंतर होगा? हाँ, निरंतर होगा। तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। तो एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितना पड़ेगा? हाँ, जघन्य अंतर हमको चाहिए। अन्य अन्य लब्धि अपर्याप्तकों में गया, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त को छोड़कर अन्य लब्धि अपर्याप्त, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, एकेंद्रिय जो कुछ है, और वापस पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त में, यानी एक शुद्र भाव ग्रहण होगा। देखो, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से शुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कर्ष से कितना होगा? देखो, एक इंद्रियों की तो मेजॉरिटी है वहां, तो उत्कृष्ट से कितना है? अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर होता है। इसी प्रकार द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों से पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के अंतर में कोई भेद नहीं है। एदम इंद्रिय पड़ुच्च अंतरम, लब्धि अपर्याप्तकों का जो अंतर देखते हैं वहां तो कोई गुणस्थान चेंज होने का सवाल ही नहीं है। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों को छोड़कर अन्य किसी भी पर्याय में चला जाए जीव, भले वो यानी पर्याप्त पंचेंद्रिय हो जावे, या चतुरिंद्र हो, तीनद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, एक इंद्रिय हो, मेजॉरिटी एक इंद्रियों की है। असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों में वो सब उसके भी जो जो यथायोग्य काल वो सब समझ लेना, उसमें वापस लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय में आने तक का काल उसको छोड़कर अन्य की स्थिति सब ले लेना उसमें। इसलिए कहते यह इंद्रिय की अपेक्षा अंतर है। एदम इंद्रिय पड़ुच्च अंतरम, यानी यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा अंतर नहीं है, गुणस्थान तो वही का वही एक मिथ्या तो ही गुणस्थान है, चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है। अन्य इंद्रिय वाले में चला गया और वापस आया, उसका ये अंतर कहेंगे। गुणम पड़ुच्च उभयदो वीण अथ्य अंतरम निरंतरम। गुणस्थान की अपेक्षा दोनों ही प्रकार से अंतर नहीं है, दोनों ही प्रकार से नहीं, नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा, जघन्य और उत्कृष्ट, ये सब प्रकार से ले लो उसको, दोनों प्रकार से अंतर नहीं है, ये दोनों ही सूत्र सुगम है। वो सूत्र शब्द दीर्घ चाहिए, सूत्र सूत्र लिखे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सूत्र यानी धागा, ये सूत्र उसमें भी सुदीर्घ ही होता है ना, सूत्र सूत्र दीर्घ ही होता है, सूत्र के दो अर्थ है। हाँ, इस प्रकार इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुई। ये अष्टपौड़ में कहा है, सूत्र के बिना जो सुई होती है ना, वो कहीं पर भी खो जाती है, मिलती नहीं जल्दी। तो जो लेडीज है उनको तो पता है, हम सीते हैं तो हमेशा सुई में दोरो यो धागा पिरो के रखते हैं, और वो कहाँ डाल के रखते हैं तो वो जल्दी ख्याल में आ जाता है, मिल जाता है, और उसमें वो सुई में धागा नहीं होगा तो सुई कहाँ खो जाती है, मिलती नहीं है। ये कुंदकुंदाचार्य ने उदाहरण दिया है 2000 वर्ष पहले, तो तभी भी ये सुइयां खोई जाती थी। तो ये सूत्र का उदाहरण क्यों दे, वैसे सूत्र के बिना यानी जिनेंद्र भगवान के वचन के बिना ये जीव कहाँ खो जाता है, अभी ये देखा ना हमने, असंख्यात पुद्गल परावर्तन वो भ्रमण करता है, इसलिए हमेशा सूत्र को रखना साथ में, ऐसा कहते हैं अपने में पिरो के रखना उसको धागे को। अब काय मार्गना की बात चलेगी, देखो कायाणु आदेना पुड़वी काय आऊ काय तेऊ काय वाऊ काय, फिर उसमें बादर सुम और उसमें भी पज्जत पज्जतानम अंतरम केवल केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चनथ्यंतरम निरंतरम। देखो अभी काय मार्गणा चल रही है, यानी यहाँ षट काय मार्गणा की अपेक्षा से जीवों के छह भेद है। इंद्रिय मार्गणा में हमने पांच ग्रुप किए थे, अभी वो पांच ग्रुप में से चार ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसको हम त्रस्काय कहेंगे, और एक इंद्रिय वाला है उसके पांच भेद करेंगे, स्थावर पांच स्थावर अलग अलग करेंगे। तो काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक जल कायिक कौमा देना तेजस कायिक वायु कायिक, इनके बादर और सूक्ष्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यानी इन पर्यायों में हमेशा ही कोई ना कोई जीव पाएंगे, हमेशा रहेंगे, यह सूत्र सुगम है। दंड देना वहां फुल स्टॉप। अभी अगला सूत्र, ये दोनों को ही नाम 131 ही लिखा है, ऊपर 130 लिखना। हाँ, प्राकृत में 131 का 130 करो, पहले वाला बड़ा सूत्र जो है ना वहां पर। हाँ, क्या कहते हैं, एक जीवम पड़ुच्च जहने न खुद्दा भवक गहणम। उक्त जीवों का, उक्त जीव ने भी काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी काय का आदि स्थावर का हमने देखे, उनका एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है। मान लेते पृथ्वी कायिक है कोई, तो अन्य क्षुद्र भव को धारण किया उसने और वापस पृथ्वी में आ गया, तो उसका वो क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल है, क्योंकि इन पृथ्वी कायिक आदि जीवों का अविवक्षित अपर्याप्तकों में उत्पन्न होकर हम जो जीव जिस कायिक में है वो विवक्षित हो जाएगी। कोई जल कायिक की बात कर रहे हैं और पृथ्वी है तेज है, वो उसके लिए अविवक्षित काय कहेंगे, अन्य काय में उत्पन्न हुआ और वापस इस काय में आ गया। सर्वस्थोक काल से पुनः विवक्षित काय में आए हुए जीवों के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण जघन्य अंतर पाया जाता है। अब उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? तो कहते उपकस्येन अनंत कालम असंख्येज्य पोग्गल परियट्टम। उक्त पृथ्वी कायिक आदि जीवों का उत्कृष्ट अंतर अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। यानी पृथ्वी कायिक में से अन्य कायिक में चला गया, वो भी एक इंद्रिय है ना, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल बताया वहां। क्योंकि विवक्षित काय से वनस्पति कायिकों में उत्पन्न अंतर को प्राप्त हुआ जीव आवली के असंख्यात वे भाग पुद्गल परिवर्तन वनस्पति काय की स्थिति तक परिभ्रमण कर, ये तो वनस्पति काय की स्थिति इतनी बताई है आवली के, यानी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन वनस्पति काय की स्थिति तक परिभ्रमण कर और अविवक्षित शेष कायिक जीवों की भी स्थिति तक परिभ्रमण करके, यानी उनकी भी स्थिति उसी में मिला देना। तत्पश्चात विवक्षित काय में जो जीव आता है उसके सूत्रोक्त उत्कृष्ट अंतर पाया जाता है। यहाँ विवक्षित काय से वनस्पति कायिकों में उत्पन्न अंतर को प्राप्त, उत्पन्न होकर चाहिए ना, अपिद काया दो वनस्पति काई येसु उपज्य, उत्पन्न होकर चाहिए, उत्पन्न होकर अंतर को प्राप्त हुआ जीव मिला। पहली लाइन इसमें 132 के नीचे की, उत्पन्न होकर अंतर को प्राप्त हुआ ना, पृथ्वी कायिक में था वनस्पति कायिक में चला गया, उसका अंतर चालू हो गया पृथ्वी कायिक का, फिर वनस्पति कायिक, फिर अन्य अन्य कायिकों में परिभ्रमण कर वापस आया। अब अगला सूत्र, वनस्पति काय निगोद जीव बादर सुहम पज्जत अपज्जतानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। वनस्पति कायिक निगोद जीव उनके बादर व सूक्ष्म तथा उनके उन सब के पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, हमेशा उन पर्याय में जीव रहेंगे। यह सूत्र सुगम है। अब अगला सूत्र, यानी अंतर की कब पड़ेगा, एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ सकता है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन खुद्दा भवक गहणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्षुद्र भवक ग्रहण प्रमाण है। क्योंकि विवक्षित काय से अविवक्षित काय को जाकर अति लघु काल से पुनः विवक्षित काय में आए हुए जीव के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण अंतर पाया जाता है। अब उत्कृष्ट काल कहेंगे, उपकस सेना असंख्येज्या लोगा, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक है। क्योंकि विवक्षित वनस्पति काय से पृथ्वी जल अग्नि और वायु कायिक जीवों में उत्पन्न होकर असंख्यात लोक मात्र काल तक उन्हीं में परिभ्रमण कर पुनः विवक्षित वनस्पति काय को आए हुए जीव के असंख्यात लोक प्रमाण अंतर पाया जाता है। यानी असंख्यात लोक काल किसका कहा भी है? पृथ्वी कायिक आदियों का। और वनस्पति काय के लिए अंतर, ये स्थिति कितनी कही, स्थिति की बात मैं करें, वनस्पति कायिक में गया हुआ जीव उसकी स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और वनस्पति को छोड़कर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है उसमें असंख्यात लोक, कौन सा ज्यादा है पूछते हैं, असंख्यात पुद्गल असंख्यात लोक प्रमाण अंतर पाया जाता है। अब ये हो गई बात, अभी ये जो बादर वगैरह की बात करेंगे वो कल ले लेंगे हम, यहाँ तक तो हम रुकेंगे अभी आज। जावाणी के ज्ञान